नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एमिल रूडर की टाइपोग्राफी, अ मैनुअल ऑफ डिजाइन, आधुनिक ग्राफिक डिजाइन और मुद्रण कला की आधारभूत कृतियों में गिनी जाती है। मूलतः 1967 में प्रकाशित यह पुस्तक स्विस या इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक स्टाइल की शिक्षण पद्धति को सुसंगत रूप में प्रस्तुत करती है। यह प्रेरक उदाहरणों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि अक्षरों, शब्दों, रिक्त स्थान, अनुपात और पृष्ठ संरचना के संबंधों का कठोर अध्ययन है। रूडर के अनुसार, टाइपोग्राफी का पहला दायित्व सूचना को स्पष्ट और पठनीय रूप में पहुंचाना है। इसलिए सजावट, निजी शैली और दृश्य प्रभाव को संप्रेषण की जरूरत के अधीन रहना चाहिए। पुस्तक में लेखक तथा बासेल के विद्यार्थियों के अनेक अभ्यासों के माध्यम से दिखाया गया है कि सीमित साधनों से भी सटीक, जीवंत और अर्थपूर्ण रचनाएं कैसे बनती है। इसका उद्देश्य किसी स्थिर नुस्खे का पालन कराना नहीं, बल्कि डिजाइनर की देखने, तुलना करने और दृश्य निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, टाइपोग्राफी में कार्य, पठनीयता और सौंदर्य का संबंध। रूडर की पद्धति का केंद्रीय सिद्धांत है कि टाइपोग्राफी पहले कार्यात्मक संप्रेषण है। मुद्रित शब्द को पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए कोई भी दृश्य निर्णय, चाहे वह अक्षर चयन हो, आकार हो, पंक्ति अंतर हो या रंग हो, पाठक की समझ को कमजोर नहीं करना चाहिए। यह दृष्टि सौंदर्य को नकारती नहीं है, बल्कि उसे स्पष्टता से जोड़ती है। एक सुव्यवस्थित पृष्ठ सुंदर इसलिए लगता है कि उसकी सूचना व्यवस्था आसानी से ग्रहण की जा सकती है। शीर्षक, मुख्य पाठ, टिप्पणियां और चित्र संबंधित सामग्री के बीच अंतर तुरंत समझ में आए तो डिजाइन अपनी भूमिका निभाता है। रूडर के लिए अस्पष्ट या पढ़ने में कठिन मुद्रण केवल शैलीगत विफलता नहीं, उद्देश्य की विफलता है। इस विचार का व्यावहारिक अर्थ है कि डिजाइनर को सजावटी अक्षरूप या असामान्य विन्यास चुनने से पहले पाठ की प्रकृति, पढ़ने की दूरी, माध्यम और सूचना की प्राथमिकता पर विचार करना चाहिए। आज स्क्रीन पर पढ़े जाने वाले इंटरफेस, संपादकीय पृष्ठ और सार्वजनिक सूचना तंत्र में भी यह कसौटी उपयोगी है। पुस्तक याद दिलाती है कि प्रभाव पैदा करना और अर्थ पहुंचाना अलग बातें हैं, और अच्छी टाइपोग्राफी इन दोनों में से दूसरे को आधार बनाती है। दूसरा, अक्षरूप और रिक्त स्थान का संयुक्त निर्माण। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण योगदान यह दिखाना है कि टाइपोग्राफिक रूप केवल काले छपे अक्षरों से नहीं बनता, बल्कि उनके चारों ओर और भीतर उपस्थित सफेद स्थान से भी बनता है। रूडर इसे रूप और प्रतिरूप के संबंध के रूप में देखते हैं। अक्षरों के भीतर के खुले भाग, अक्षरों के बीच की दूरी, शब्द अंतर, पंक्तियों का फासला और मार्जिन सभी पाठ की बनावट और लय निर्धारित करते हैं। यदि अक्षर बहुत पास हों तो शब्द घने और स्पष्ट हो जाते हैं, बहुत दूर हों तो शब्दों की एकता टूटती है। इसी तरह अनुचित पंक्ति अंतर पाठ को या तो दबा हुआ या बिखरा हुआ बना सकता है। रूडर का विश्लेषण डिजाइनर को यह समझने में मदद करता है कि खाली स्थान बचा हुआ क्षेत्र नहीं है, बल्कि सक्रिय संरचनात्मक सामग्री है। यह दृष्टि विशेषतः उपयोगी है क्योंकि शुरुआती डिजाइनर प्रायः अक्षरों को वस्तु और सफेद क्षेत्र को पृष्ठभूमि मानते हैं। पुस्तक इसके विपरीत दोनों को परस्पर निर्भर दृश्य शक्तियों के रूप में रखती है। परिणामतः पाठ का रंग, घनत्व और पढ़ने की गति बदलती है। इस प्रकार रिक्त स्थान को नियंत्रित करना केवल सज्जा नहीं, अर्थपूर्ण और आरामदायक पठन की तकनीक बन जाता है। तीसरा, सीमित साधनों से पदानुक्रम, विरोध और लय। रूडर की शिक्षण पद्धति में सीमा रचनात्मकता की बाधा नहीं, उसका अनुशासन है। सीमित अक्षर परिवार, कम रंगों और निश्चित प्रारूप के साथ काम करने पर डिजाइनर बाहरी अलंकरण के बजाय आकार, भार, अंतराल, संरेखण और स्थानिक संबंधों पर ध्यान देता है। पुस्तक में विरोध का अर्थ केवल मोटे और पतले अक्षरों का अंतर नहीं है, बड़ा और छोटा आकार, काला और सफेद क्षेत्र, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा, घना और विरल विन्यास तथा स्थिर और गतिशील व्यवस्था भी विरोध उत्पन्न करते हैं। इन अंतरों को नियंत्रित ढंग से उपयोग करने पर सूचना का पदानुक्रम बनता है। पाठक पहले क्या देखेगा, किस सूचना को सहायक मानेगा और किस क्रम में सामग्री पढ़ेगा, यह संयोग पर नहीं छोड़ा जाता, लय भी इसी व्यवस्था से बनती है। दोहराव, अंतर और माप के बदलाव पृष्ठ को यांत्रिक एकरूपता से बचाते हैं, पर उसे अव्यवस्थित नहीं होने देते। रूडर की विधि में अभ्यासों को अलग दृश्य समस्याओं के रूप में समझना जरूरी है, फिर उन्हें एक रचना में मिलाना। यह क्रम डिजाइन निर्णयों को अधिक सचेत बनाता है। डिजिटल टेम्पलेटों के युग में भी इसका महत्व है, क्योंकि उपलब्ध फॉन्ट और तैयार लेआउट विकल्पों की बहुतायत अक्सर पदानुक्रम के वास्तविक प्रश्न को छिपा देती है। चौथा, ज्यामितीय व्यवस्था और दृष्टि के अनुभव के बीच संतुलन। स्विस टाइपोग्राफी को अक्सर केवल ग्रिड, गणित और कठोर संरेखण से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रूडर की पुस्तक अधिक सूक्ष्म दृष्टि देती है। वह ज्यामितीय और दृष्टिगत दोनों प्रकार के संबंधों पर विचार करती है। माप के अनुसार बराबर दिखाई देने वाली दूरी हमेशा आंख को बराबर नहीं लगती, क्योंकि अलग अक्षरूपों, तिरछी रेखाओं, गोल आकृतियों और सफेद स्थान के वितरण से दृश्य भार बदलता है। इसलिए डिजाइनर को नियम लागू करने के साथ परिणाम को देखना भी सीखना पड़ता है। यह बात अक्षरों के अंतराल, केंद्रित रचनाओं, किनारों के संरेखण और पाठ तथा चित्र के मेल में विशेष महत्व रखती है। पुस्तक तकनीकी शुद्धता को यांत्रिकता के बराबर नहीं मानती। उसका उद्देश्य ऐसा क्रम बनाना है जिसमें पाठक को स्पष्ट दिशा मिले और पृष्ठ में तनाव या ऊर्जा भी बनी रहे। चित्र और टाइप के संबंध पर रूडर दो संभावनाएं सामने रखते हैं, औपचारिक सामंजस्य या जानबूझकर लचा गया विरोध। दोनों ही स्थितियों में निर्णय सामग्री की भूमिका से निकलना चाहिए। यह अध्याय संबंधी दृष्टि डिजाइनर को बताती है कि ग्रिड अंतिम उत्तर नहीं है, वह निर्णय लेने का ढांचा है जिसे दृष्टिगत परीक्षण, संशोधन और सामग्री की जरूरतों के साथ संचालित करना पड़ता है। अंत में मुद्रण तकनीक, सामग्री और आधुनिक टाइपोग्राफिक अनुशासन। रूडर टाइपोग्राफी को केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, तकनीक, सटीकता और सुव्यवस्था का क्षेत्र मानते हैं। उनका दृष्टिकोण उस मुद्रण संस्कृति से बना है जिसमें अक्षर संयोजन, सेटिंग, कागज, स्याही और पुनरुत्पादन की सीमाएं डिजाइन के प्रत्यक्ष भाग थे। पुस्तक लिखावट और मुद्रित अक्षरों के भेद पर भी ध्यान देती है। हाथ से बनी रेखा की सहजता और यांत्रिक रूप से दोहराए जा सकने वाले टाइप की संरचना अलग होती है, इसलिए उन्हें बिना सोचे मिलाना दृश्य असंगति पैदा कर सकता है। यह विचार किसी माध्यम को निषिद्ध घोषित करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अंतर्निहित प्रकृति समझने के लिए है। रूडर के उदाहरणों में प्रयोगशीलता मौजूद है, लेकिन वह सामग्री और प्रक्रिया की समझ से बंधी है। सीमित रंगों, अक्षर भारों और प्रारूपों के प्रयोग से वे दिखाते हैं कि तकनीकी प्रतिबंध भी प्रभावी रचना का आधार बन सकते हैं। समकालीन डिजिटल डिजाइनर के लिए इसका सबक माध्यम बदलने पर भी कायम रहता है। फॉन्ट, स्क्रीन, उत्तरदायी लेआउट और प्रिंट उत्पादन की अपनी सीमाएं हैं। अच्छी व्यवस्था तभी बनती है जब डिजाइनर उपकरण की सुविधा के बजाय उसके व्यवहार, पुनरुत्पादन और पाठकीय परिणाम को समझकर निर्णय ले। यही तकनीकी चेतना पुस्तक को केवल शैली इतिहास नहीं, कार्य पद्धति बनाती है। निष्कर्ष में टाइपोग्राफी, अ मैनुअल ऑफ डिजाइन, उन विद्यार्थियों, ग्राफिक डिजाइनरों, संपादकीय डिजाइनरों और दृश्य संप्रेषण के पेशेवरों के लिए सबसे उपयोगी है जो अक्षरों को केवल फॉन्ट चुनने का विषय नहीं मानते। यह विशेष रूप से उन पाठकों के काम आएगी जो लेआउट में स्पष्ट पदानुक्रम, बेहतर पठनीयता और रिक्त स्थान के नियंत्रित उपयोग की बुनियाद बनाना चाहते हैं। पुस्तक का लाभ तुरंत तैयार डिजाइन नकल करने में नहीं, बल्कि हर निर्णय के पीछे मौजूद दृश्य तर्क को समझने में है। पाठक आकार, भार, अंतराल, संरेखण और विरोध को अलग साधनों की तरह देखना सीखता है, फिर उन्हें एक कार्यात्मक संपूर्णता में जोड़ सकता है। इसके उदाहरण और अभ्यास इसकी बातों को केवल सैद्धांतिक नहीं रहने देते। अपने क्षेत्र की कई समकालीन पुस्तकों की तुलना में रूडर का काम अधिक कठोर, तकनीकी और अपने स्विस आधुनिकतावादी संदर्भ से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह विविध शैलियों का त्वरित कैटलॉग या मुफ्त सजावटी प्रयोगों की मार्गदर्शिका नहीं है। इसकी सीमा भी यही है, क्योंकि कुछ पाठकों को इसका अनुशासन अत्यधिक नियंत्रित लग सकता है, फिर भी यही एकाग्रता इसे अलग बनाती है। जहां अनेक पुस्तकें प्रेरणा या नियमों की सूची देती है, रूडर टाइपोग्राफिक संबंधों को देखने की व्यवस्थित क्षमता विकसित करते हैं। मुद्रण के युग में लिखी गई होने पर भी स्पष्टता, संरचना और माध्यम सजगता के इसके सिद्धांत स्क्रीन आधारित डिजाइन के लिए भी प्रासंगिक हैं। गंभीर अध्ययन के लिए यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज और व्यावहारिक मानक दोनों है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एमयू रूडर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।